قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہمارا فوکس آج ہوگا کلام کے ان حصوں پر جو یسوع مسیح کی زبان سے اس وقت نکلے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، جی اٹھنے کے بعد جو اس نے کلام کیا ہے، اور بائبل مقدس کا حصہ ہے جی اٹھے مسیح کا مقصد کلام۔ ہم نے ابھی جمعے کو غور کیا کہ گتسمنی سے گلگتا تک دکھ کے ان پہروں میں یسوع مسیح نے کلام کیا تو بہت تھوڑا کلام کیا، خاص طور پہ صلیب پر 6 گھنٹے گزارے اور کلمے کتنے کہے، 6 گھنٹوں میں 7 باتیں، تھوڑا کلام۔ لیکن جب یسوع جی اٹھتا ہے، جب وہ موت قبر اور ابلیس اور گناہ اور جسم اور دنیا پر فتح پا کر زندہ ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہی کلام کرنے کے لیے ہوتا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں، کیونکہ اب وقت ہے اس کے علم میں، اس کے ارادے میں، اس کی مرضی میں، اس کی حکمت میں یہ بات ہے کہ اب میں نے ظاہر ہونا ہے، میں جی اٹھا ہوں اور میں نے ظاہر ہو کے کلام کرنا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا، پہلے وہ کم بولتا تھا، تھوڑا بولتا تھا، تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ باتیں تھی، مقصد تھا۔ اب وہ ظاہر ہی کلام کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دیکھ لیجئے کہیں بھی جی اٹھنے کے بعد یسوع ظاہر ہوا کسی پر، دوسروں کا کلام بہت تھوڑا ہے، یسوع کے منہ کی باتیں زیادہ ہیں۔ تو یسوع ظاہر ہی ہوتا ہے اپنے شاگردوں سے کلام کرنے کے لیے، اور جی اٹھا یسوع اپنے شاگردوں کو خوف سے آزاد کرنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ جو رسول تھے ان کی زیادہ تر تعداد ایک ہی جگہ جمع ہو گئی تھی، اور اس جگہ کے دروازے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ شاگرد ڈرے ہوئے تھے کہ یہودیوں نے اور رومیوں نے ہمارے استاد کو، ہمارے خداوند کو صلیب پر مار دیا ہے، اس کا بدن اب قبر میں پڑا ہوا ہے، وہ دکھ کی حالت میں ہے اور خوف کا شکار ہیں کہ ہم جس کے پیچھے چلتے تھے اب وہ ہمارے سروں پہ نہیں ہے، اب وہ ہمارے آگے چلنے والا نہیں ہے، اب اس کی موجودگی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں بھی لوگ پکڑیں گے، ماریں گے، ستائیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی قتل کر دیا جائے۔ اس لیے وہ ڈر کے مارے اپنے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور صلابات میں پڑے ہوئے ہوں گے، اب کیا کریں، کیسے بچا جائے؟ لیکن یسوع ظاہر ہوتا ہے، کلام کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے ڈرو مت، خوف نہ کرو۔ یسوع اپنے شاگردوں پر جب جب ظاہر ہوا جی اٹھنے کے بعد، تو پہلی باتیں جو اس نے کی ان میں یہی تھا کہ ڈرو مت، خوف کا شکار نہ ہو۔ ایک تو یہودیوں سے ڈرتے تھے، رومیوں سے ڈرتے تھے، قوم سے ڈرتے تھے، موت سے ڈرتے تھے، اور جب یسوع بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا تو ڈرنے لگے کہ شاید ہم کوئی روح دیکھ رہے ہیں، کہ یہ حقیقی ہستی نہیں ہے، دروازے تو بند ہیں، یہ بیچ میں کہاں سے کوئی شخص موجود ہو گیا، یہ کوئی روح ہے۔ یسوع کو معلوم تھا، اس نے کہا ڈرو مت، یہ مت سمجھو کہ میں کوئی روح ہوں، چھو کر دیکھ لو، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، مجھ میں ہے، دیکھ لو مجھے۔ یسوع نے خوف سے آزاد کیا۔ ہم بعض اوقات ڈرتے ہیں دنیا سے، ہم ڈرتے ہیں حالات سے، ہم ڈرتے ہیں غیر قوموں سے، ہم ڈرتے ہیں حکمرانوں سے، ہم ڈرتے ہیں اپنے نقصان سے، اور بعض اوقات ہم خدا کی حضوری میں آنے سے ڈرتے ہیں، خدا کے پاس رہنے سے ڈرتے ہیں، خدا کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، خدا سامنے کھڑا ہو اس پہ یقین کرنے سے ڈرتے ہیں۔ خداوند یسوع جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کلام کرتا ہے ان کے خوف دور کرنے کے لیے، نہ تم دنیا سے ڈرو، نہ تم دشمنوں سے ڈرو، نہ تم موت سے ڈرو، نہ تم بہکانے والوں سے ڈرو، اور نہ خدا کی حضوری سے ڈرو، کیونکہ جی اٹھا مسیح اپنے جلال میں تمہارے بیچ میں ہے۔ کہیں زمانہ تھا موسیٰ سے خدا نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پہ اتروں گا، ایک بادل کی صورت میں اتروں گا، اور قوم سے کہنا 3 دن پاک ہو، پھر پہاڑ کے نیچے اس کے دامن کو، پہاڑ کے پیروں کو کوئی نہ چھوئے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ اتروں گا۔ کوہ سینا پہ کلام کیا، कौम चिल्ला उठी, मूसा तू ही बातें किया कर, हम डरते हैं तू ही कलाम किया कर, क्योंकि हम खुदा से डरते हैं, क्योंकि उसका जलाल और उसकी हैबत बर्दाश्त नहीं होती। खुदावंद यीशु जी उठने के बाद जलाली हालत में, इन द ग्लोरियस फॉर्म, वो बीच में आ जाता है और वो डरते हैं, खुदावंद से भी डरते हैं। हम भी खुदावंद से, उसकी हजूरी में आने से, उसके हजूर पेश होने से, खुदा की रफाकत से, फेलोशिप रखने से डरते हैं। जी उठा यीशु शागिर्दों को भी खौफ से आजाद करने के लिए कलाम करता है, और वो आज आपसे भी और मुझसे भी कलाम करता है, मत डरो, ना हुक्मरानों से, ना सताने वालों से, ना गैर कौमों से, ना बेईमानों से, ना पकड़वाने वालों से, ना बांधने वालों से, ना कैद करने वालों से, ना इल्जाम लगाने वालों से, ना कत्ल करने वालों से, ना वार करने वालों से, और ना मेरी हजूरी में आने से डरना नहीं है, क्योंकि मैं गालिब आ चुका हूं। जी उठा यीशु कलाम करता है अपने शागिर्दों को सलामती बख्शने के लिए, क्योंकि वो टूट फूट गए हैं, उनके दिल बैठे हुए हैं, वो खतरों में पड़े हुए हैं, उन्हें इस बात की परेशानी है कि आइंदा क्या होगा। हम खतरों का शिकार हो गए हैं, हमारा कारोबार छूट गया है, जिसने कहा था सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, अब क्या बनेगा। सब कुछ छोड़ चुके हैं, उसने कहा था कि अपना घर बार छोड़ो, जो कोई अपने मां बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने जीवन साथी को, अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को, अपनी दौलत को, अपनी पोजीशन, अपने मुकाम को, अपने कारोबार और रोजगार को मुझसे ज्यादा अजीज रखेगा, वो मेरे लायक नहीं है। हम तो सब कुछ छोड़ चुके, अब यहां बैठे हुए हैं, अब बिखरे हुए हैं, हम अपने खानदानों के पास कैसे लौट के जाएंगे, रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, अब हम अपने रिश्तेदारों को कैसे मिलेंगे, हम तो जिसके पीछे चले थे वो अब हमारे पास नहीं है, वो इस दुनिया से पर्दा कर चुका है, वो मौजूद नहीं है, और सब हमारे ख्वाब भी बिखर गए हैं, हम टूट फूट गए हैं। और याद रखिए कि उनमें से शागिर्द एक ने तो खुदकुशी कर ली और दो गांव को चले गए, बिखर गए ना, खतरों में पड़ गए ना, फिक्रमंदियां आ गई, लेकिन यीशु जी उठने के बाद आता है और पहले अल्फाज यीशु मसीह के शागिर्दों से क्या होते हैं, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं तुम्हें सलामती देता हूं। हम जब सलाम करते हैं किसी को तो हम उसे दुआ देते हैं कि खुदा की सलामती तुम पर हो। सलामती कहां से आती है? खुदा से। सलामती का शहजादा कौन है? यीशु। हम दुआ देते हैं खुदा तुम्हें सलामत रखे। हम किसी को सलामत नहीं रख सकते, लेकिन जो सलामत रखने वाला है वो कह रहा है तुम्हारी सलामती हो, मैं अपनी सलामती तुम पर भेज रहा हूं, मैं नाजिल कर रहा हूं, मैं अपने मुंह के कलाम से सलामती जारी कर रहा हूं। कहीं टूट गए हो तो सलामत हो जाओ, कहीं बिखर गए हो तो इकट्ठे हो जाओ, डर का शिकार हो तो तुम वापस आ जाओ, किसी बात की फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। हम भी बड़े परेशान हैं ना, पता नहीं क्या होगा, खुदावंद की सलामती जारी है। जी उठा यीशु सलामती देने के लिए कलाम करता है, उसका सलामती देने वाला कलाम हमारे लिए भी है। और यीशु अपने शागिर्दों को पाक नविश्तों की समझ बख्शने के लिए कलाम करता है। नविश्तों में गवाहियां हैं कि वो मरेगा और फिर जी उठेगा, लेकिन वो इस बात को समझ ना सके। यीशु ने जी उठने के बाद जब कलाम किया अपने शागिर्दों से तो उनके जहन खोले, उन्हें सिखाया कि नविश्ते क्या कहते थे और तुम्हें इन्हें समझने की जरूरत है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और लिखा है कि यीशु ने नविश्तों की बातें उन्हें समझाई, समझ दी उन्हें, अकल दी उन्हें, उनका जहन रोशन किया, इस काबिल बना दिया कि वो पाक नविश्तों को, होली स्क्रिप्चर्स को, पाक कलाम की बातों को समझ सकें। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में किताब मुकद्दस की अहमियत नहीं, और ऐसा भी है कि चलो पढ़ तो लिया, सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें तो इससे जानने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है किसी खुदा के खादम के पीछे जाने की, कलीसिया का हिस्सा बनने की, क्योंकि हम तो खुद पढ़े लिखे हैं, बचपन से हम जानते हैं, हमारा दादा पादरी था, हमारा बाप एल्डर था, हमारी माँ संडे स्कूल की टीचर थी, और मैंने खुद ट्रेनिंग की हुई है संडे स्कूल की, मुझे क्या जरूरत है सीखने की। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद कलाम करता है सिखाने के लिए कि तुम पाक नविश्तों को समझ सको, उनकी अहमियत को जानो, और यीशु के बारे में ये नविश्ते क्या कहते हैं उन्हें जानो, समझो, कबूल करो, ईमान लाओ, और फिर उनके मुताबिक अमल करो। हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस ख्वाहिश को पूरा करना है कि हम किताब मुकद्दस को पढ़ें, सुने, समझने की कोशिश करें। खुदा इस बारे में हमारी मदद करना चाहता है। रोमियों के खत में लिखा है कि ईमान कैसे पैदा होता है, सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। जो कलाम मसीह का है, जो मसीह की बाबत है, जो मसीह के बारे में बताता है, उस कलाम को सुनने से ईमान पैदा होता है। सो यीशु जी उठने के बाद कलाम करता है अपने शागिर्दों को पाक नविश्तों की समझ देने के लिए, और यह समझ सिर्फ खुदा की तरफ से मिलती है, कोई इंसान नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझ सकता ना समझा सकता जब तक कि खुदा ना समझाए। और यीशु अपने शागिर्दों का ईमान बहाल करने के लिए कलाम करता है। उनका ईमान बिखर चुका था, ईमान जाए हो चुका था, वेस्ट हो चुका था, कहीं दूर जा चुका था, जैसे यीशु के साथ ही उनकी उम्मीद और उनका ईमान कब्र में दफन हो चुका था। उनको कोई उम्मीद ना थी कि वो जी उठेगा। अगर उम्मीद होती, अगर ईमान होता उसके जी उठने पे, तो खुशबुएं लेकर सुबह औरतें ना जाती, फूलों के हार लेके जाती, फतह के शादियाने बजाने के लिए कोई ढोलक, कोई दफ लेके जाती, कोई खुशी का सेलिब्रेशन के लिए चीजें लेकर जाती कि वो जी उठा है, हम तो उसका इस्तकबाल करने जा रही हैं। कोई उम्मीद ना थी, कोई ईमान ना रहा उसके जी उठने पे। यीशु जाहिर होता है जी उठने के बाद, कलाम करता है, और जिससे मिला है उससे कहा, यकीन करो कि मैं जी उठा हूं, और जाकर दूसरों को बता दो। ईमान बहाल करने के लिए यीशु कलाम करता है जी उठने के बाद। जिनका ईमान मर गया था उनका ईमान बहाल कर देता है यीशु। आज भी कुदरत रखता है हमारे ईमान को बहाल करने के लिए। हम क्या देखते हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं रहे, खुदा हमारी सुनता नहीं है, हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, मेरा कारोबार ठीक नहीं हो रहा। अगर वाकई खुदामंद है जिसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो कहां है, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, मेरे हालात तो खराब हैं, तो फिर हमारे दिल में ईमान कहीं दूर चला जाता है। हम कहते हैं बीमारी आ गई, इलाज नहीं हो रहा, गरीबी आ गई, कहीं से खुशहाली आ नहीं रही, कारोबार खत्म हो गया, वापस नहीं हो रहा, क्या करें, कहां जाएं। हम गलत ईमान तो नहीं रखते रहे, हमारा ईमान कहीं दूर चला जाता है कि जैसे मानो के मर गया हो। लेकिन जब यीशु जी उठता है, वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है, कलाम करता है, उनका ईमान बहाल करता है कि तुम जान लो कि मैं जी उठा हूं, तुम्हारा ईमान बेफायदा नहीं है, तुम्हारा ईमान जो कहीं दब गया था अब मैं वापस उसे जिंदा कर रहा हूं, क्योंकि वो ईमान का बानी और काबिल करने वाला है, वही ईमान अता करता है, वही ईमान मुकम्मल करता है। और जब तक वो ईमान मुकम्मल ना करे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। कोई इंसान अपनी मर्जी से ना ईमान ला सकता है और ना ईमान में कायम रह सकता है। यीशु ईमान का बानी है, ही इज द ऑथर ऑफ फेथ एंड ही इज द परफेक्टर और फिनिशर ऑफ फेथ। वो ईमान बहाल करता है, और जी उठा यीशु अपने शागिर्दों की मेहनत कामयाब बनाने के लिए कलाम करता है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, अपने घरों से दूर आए हुए हैं, या कोई अपने खानदानों के साथ भी बहरीन में आए हुए हैं, हम तकलीफें उठाते हैं, हम मुसीबत सहते हैं, हम गर्मी सर्दी सहते हैं, हम धूप छांव सहते हैं, हम भूख प्यास सहते हैं, हम अपने सुपरवाइजर की, फोरमैन की, मैनेजर की गुस्सीली और कड़वी बातें भी सुनते हैं, हम किसी कर्ज में भी मुबतला हो जाते हैं, हम तकलीफ और दुखों से गुजरते हैं, हम दर्द से भी पड़े होते हैं, तो कोई हमारी साइड बदलने वाला नहीं होता, फोन आ जाता है, इतने चाहिए, मैं बड़ी मेहनत करता हूं, कामयाब नहीं होता। यीशु के जी उठने के बाद भी शागिर्द मछली पकड़ने के लिए चले गए, अपने काम पे वापस हो गए, सारी रात जाल डालकर बैठे रहे, लेकिन कोई मछली हाथ ना आई। वो माहिर कारीगर थे, एक्सपर्ट थे। ये जो कश्ती चलाने वाले होते हैं, इन्हें हवाओं की पहचान होती है कि अब हमने बादबान वो कपड़ा जो लटका होता है वो किस तरफ करना है, हमने सफर किस तरफ करना है और हवा किधर की है, हमने किस तरह से कश्ती आगे लेके जानी है। हवाओं का भी पता होता है और पानियों का भी पता होता है कि यहां गहरा है, यहां माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बचपन से जो मछेरे थे, माहीगीर थे, फिशरमैन थे, मछली पकड़ने के कारीगर थे, क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि ना हवा साजगार है और ना पानी साजगार है, ना मौसम साजगार है, ना जगह साजगार है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। माहिर कारीगर थे, पहुंचे होंगे कि आज हवा भी बड़ी अच्छी है, आज चांद भी बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि रोशनी होगी पानी की सतह पर तो मछली उभर के ऊपर आ जाएगी और हम पकड़ लेंगे। उन्हें अंदाजा होगा, पानियों को परखते होंगे, हवाओं को परखते होंगे, लेकिन फिर भी सारी रात जाल डाल के बैठे रहे तो कुछ हाथ ना आया। हम मेहनतें करते हैं, मुशक्कत करते हैं, दुख सहते हैं, कामयाब नहीं होते। यीशु जी उठने के बाद जाहिर होता है और कलाम करता है, जाल कश्ती के दाहिने तरफ डाल। जब वो डालते हैं तो मानो ऐसे हुआ होगा कि जैसे सारी उस झील की मछलियां उसी दाहिने हाथ कश्ती के किनारे लग के बैठी हों। हमारे खालिक, तेरा हुक्म हो गया है कि हमने इधर रहना है, क्योंकि जाल जब इधर डाला जाएगा हम अपना आप पेश करेंगे तेरे कलाम के पीछे चलते हुए, तेरी आवाज को मानते हुए हम जाल में दौड़ दौड़ के आएंगी। वो रिस्क जो आपको नहीं मिल रहा, वो फल जो आपको नहीं मिल रहा, जब खुदावंत का कलाम सुनोगे, जब खुदा की आवाज पहचान कर उसको मानते हुए जाल डालोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, सीवी डालोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, कोशिश करोगे, घर से निकलोगे, किसी से बात करोगे, तो वो आपके लिए रोजी को हुक्म दे देगा, रोटी को हुक्म दे देगा, तनख्वाह को हुक्म दे देगा, वाजिबात को हुक्म दे देगा कि इनकी तरफ बढ़ते चले जाओ, क्योंकि मैंने हुक्म जारी कर दिया है। वो मेहनतें कामयाब करने के लिए कलाम करता है। ये यीशु के कलाम का मकसद है। और फिर जी उठा यीशु अपने शागिर्दों को मुस्तकबिल की बाबत आगाह करने के लिए कलाम करता है। क्या होने वाला है आइंदा जमानों में, क्या होगा, क्या कुछ गुजरेगा? यीशु ये बताता है, क्योंकि उसे आसमान पे जाना है, उसे जमीन पर ज्यादा वक्त नहीं रहना। वो आइंदा जमाने की बातें बता रहा है, कैसे होगा, क्या कुछ होगा, उन्हें बता रहा है। तुम ठहरे रहना, यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना, क्योंकि मैं अपना रूह नाजिल करूंगा और फिर तुम कुवत पाओगे, और फिर यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यह खुशखबरी सारी दुनिया में फैलाई जाएगी, मेरी इंजील सारी दुनिया में फैलाई जाएगी, मेरी बातें सारी दुनिया में फैलाई जाएंगी। लोग तुम्हें सताएंगे भी, लोग तुम्हें दुख भी देंगे, लेकिन याद रखना कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो मुस्तकबिल की बाबत आगाह करता है। हमें नहीं पता होता कल क्या होना है, हमें नहीं पता मैं अपने काम पे कायम रहूंगा या नहीं,
हमें नहीं पता हमारी यह बीमारी दूर होगी कि नहीं, हमें नहीं पता क्या गुजरेगी हम पे। खुदावंद कलाम करता है, ऐ शमाउन पत्रस, जब तू बूढ़ा होगा तो तेरी कमर कोई और बांधेगा और तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू नहीं जाना चाहता। यसु ने इस तरह से उसे बता दिया कि तू किस तरह की मौत से, गौर कीजिएगा बात पे, कि शमाउन पत्रस किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। खुदावंद यसु मुस्तकबिल की बात बताता है, सिर्फ जिंदगी की बातें नहीं है, सिर्फ सेहत सलामती की बातें नहीं है, सिर्फ बरकत की बातें नहीं है, कामयाबी की बातें नहीं है, बहाली की बातें नहीं है, लेकिन वो साथ साथ मौत की बात भी बता रहा है कि तुम्हारी मौत कैसे होगी और तुम अपनी मौत से खुदा का जलाल जाहिर करोगे। इसीलिए पौलुस रसूल ने भी लिखा है, हम जिए या मरे खुदावंद के हैं, हमें कोई फिक्र नहीं पड़ती, हम जिंदा रहे तो भी मसीह के हैं, हम मर भी जाएं तो भी मसीह के हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा, यसु ये बताने के लिए जाहिर होता है, कलाम करता है अपने लोगों से, उसका मकसद है। और जब हम किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं, यसु जी उठे, यसु की बातें हैं ये, जब ये पढ़ते हैं तो हमें मुस्तकबिल का पता चलता है कि क्या होने वाला है दुनिया में, कैसे हालात होंगे। हाँ, अपनी जाती जिंदगी में हमें नहीं पता चलता, पत्रस को पता चल गया था कि बूढ़ा होगा, अभी जवान हूं, अभी तो बूढ़ा होना है। इसलिए आपको बाइबल मुकद्दस में पत्रस की मौत की कोई खबर नहीं मिलती। हां, एक जगह कैद खाने में डाला गया, अमाल की किताब में 12वां बाब है गालिबन, उसमें लिखा है कि याकूब को मार दिया गया, पत्रस को कैद में डाल दिया गया, चार चार सिपाहियों के चार पहरों में है, जंजीरों से बंधा हुआ है, कुर्ता दीवार पे टंगा है, खूंटी पे लटका है और खुद सोया हुआ है, गोया कि उसे पता है कि मौत नहीं आ रही, मरना नहीं है, ये ऐसी कैद में डाला है, अभी निकल जाएंगे, आराम से कमीज उतार के वाट ना पै जाए, सलवटे ना पड़ जाए, दीवार पे लटकाई हुई है और सोया हुआ है। कई लोगों को फिक्र होती है, बल्ब ना जलाना मेरी आंख खुल जाएगी, रोशनी ना करना, फरिश्ता उतरा, सोया हुआ, आवाज दी होगी, एक बार फरिश्ते ने आवाज दी थी, अब्राहम अब्राहम, लड़के पर अपना हाथ मत चलाओ, उसे रोक दिया क्योंकि उसकी कान लगे थे। अब बंदा सोया हुआ, फरिश्ता कमरे में आ गया, कोई पता नहीं है, आवाजें तो दी होंगी, पत्रस उठ, होश कर जवान, इतनी पुरसुकून नींद, मौत के लिए गिरफ्तार किया गया, एक साथी का सर काट दिया गया और इसे भी गिरफ्तार किया गया, फिक्र ही नहीं, टेंशन ही नहीं, आराम से सुकून से इत्मीनान से चैन से सोया हुआ है, यहां तक कि फरिश्ते को क्या करना पड़ा, पसली पे हाथ मारना पड़ा, जरा अपने साथी के इधर साइड पे पसली पे हाथ मारिए जरा, क्या होता है, तकलीफ होती है ना, सोए बंदे को पता कैसे उठाया जाता है, या तो पांव हिलाते हैं या कंधा हिलाते हैं, उसकी पसली पे मारा नहीं जाता क्योंकि ज्यादा चोट लगती है, उसको पसली पे मारना पड़ा, होश में आ, इतनी मीठी नींद है तेरी क्योंकि तुझे पता है कि अभी तू बूढ़ा नहीं हुआ, तेरे खुदावंद ने कह रखा है जब तू बूढ़ा होगा तब तेरी मौत आएगी। पत्रस को कोई फिक्र नहीं थी अपनी मौत के बारे में कि मैं मार दिया जाऊंगा, क्योंकि उसे यकीन था कि जिसके मुंह से बात निकली हुई है वो सच्चा है, वो जिंदगी है, वो जिंदगी देने वाला है, वो मौत के जबड़े चीर कर जिंदा हुआ है और उसने मुझे ये वादा दिया है तू बूढ़ा होगा तब मरेगा। खुदावंद आपके बारे में भी शख्सी कलाम कर सकता है, जाती तौर पर आपसे कलाम आज भी कर सकता है, जब आप खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारते हो ना तो खुदा आपके मुस्तकबिल के बारे में शख्सी बातें भी करता है, जाती बातें भी करता है। اپنے بارے میں مستقبل جاننا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں آگاہ ہونا ہے، تو خدا کے ساتھ بیٹھ جائیے، دعا میں وقت گزاریے، خدا سے کہیے خداوند جو کل کا دن آنے والا ہے یا جو آج صبح ہو گئی ہے کیا کروں اس میں، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو کیا چاہتا ہے میں کروں۔ تو خداوند یسوع جب جی اٹھتا ہے تو کلام کا مقصد ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں آگاہ کرنا، آپ کو بھی کر سکتا ہے وہ آگاہ۔ اور جی اٹھا یسوع اپنے شاگردوں کو روحانی اختیار اور ذمہ داریاں بخشنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں سے 20 باب ہے اور میں اس کی 22 آیت پڑھوں گا۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو، مستقبل کی بات ہے کہ جن کے گناہ تم بخشو، ابھی بخشے نہیں تم نے، میں تمہیں روح القدس دے رہا ہوں کہ جن کے گناہ تم بخشو، آگے چل کے ان کے بخشے گئے ہیں، ہو چکے ہیں، فائنل ہیں، جن کے معاف کرو گے میں پہلے ابھی سے معاف کر دیتا ہوں ان کے گناہ۔ یہ اختیار دیتا ہے خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد کلام کرتے ہوئے کہ میں تمہیں اپنا روح القدس دیتا ہوں، جس کے گناہ تم بخشو اس کے بخشے گئے ہیں، وہ پہلے ہی میں نے معاف کر دیے ہیں، یہ میرے سگنیچر ہیں تمہارے پاس، جس کے معاف کرو گے معاف سمجھے جائیں گے۔ اور لکھا ہے جن کے گناہ تم قائم رکھو، ان کے قائم رکھے جائیں گے، نہیں رکھے گئے ہیں، خدا ابھی سے فیصلہ کر چکا ہے کہ خداوند کے لوگ خداوند کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو خدا انہیں پہلے ہی معاف کر چکا ہے، اور جس کو معاف نہیں کرتے خداوند نے بھی ان کو معاف نہیں کیا ہوا۔ اب یہاں ایک بات تھوڑی ذہن میں رکھیے گا، اگر تم ایک دوسرے کے گناہ معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے گناہ معاف۔ تو ہمارے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ ہم کسی کا گناہ نہ معاف کریں، اختیار ہے، لیکن بہتر فیصلہ کیا ہے کہ ہم گناہ معاف کر دیں۔ یہ روحانی اختیار خداوند دیتا ہے کہ روح القدس لو، اور جس کے گناہ تم بخشو اس کے بخشے گئے ہیں، جس کے قائم رکھو اس کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ تم دنیا میں میری انجیل کی منادی کرنا، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، اور پترس کو بھی ذمہ داری دی تھی، شخصی ذمہ داری آ گئی، ایک تو سب کے اوپر اجتماعی ہے نا، کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم سب نے خداوند سے روح القدس لینا ہے، اس سے اختیار لینا ہے، اور روح القدس کو موقع دینا ہے کہ وہ ہم میں کام کرے۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، یہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے۔ لیکن کہیں شخصی بات بھی ہوتی ہے، اکیلے سے بات بھی ہوتی ہے۔ ایک رات تھی جب آگ جل رہی تھی، لوگ آگ تاپ رہے تھے، اور ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، لونڈی نے دیکھا، نوکر نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ارے تو بھی اسی گلیلی مرد کے ساتھ تھا، تو 3 انکار کیا۔ اب بھی ایک صبح ہے، وہ رات تھی، اب صبح ہو گئی ہے، آگ جل رہی ہے، یسوع سے ساتھ لے کے آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اے شماؤن کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ 3 پوچھا، تو نے 3 انکار کیا تھا، میں تجھے 3 پوچھتا ہوں، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ 3 جواب دیا، खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है, अब मैं क्या कहूं, तूने आग के पास बिठा दिया मुझे, वो रात याद आ गई। सवाल फिर वही आ रहे हैं, मैं उधर तेरा इनकार कर चुका, अब फिर मुझसे तू इकरार करवा रहा है, ये तेरी रहमत है, ये तेरी दया है, ये तेरा करम है कि तू मुझ पर फिर से रहम कर रहा है, तू मुझे फिर उसी मंजर में ले आया है। और मुझे अपने आप पे शर्म भी आती है, मैं कैसे कह दूं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, तू तो सब कुछ जानता है। तीन बार इकरार करवा दिया उससे और फिर उसको इख्तियार भी दिया, जा मेरी भेड़े चरा, मेरे बर्रे चरा, मेरे गल्ले की गला बानी कर, तू मेरे बाद इस कलीसिया का इंचार्ज मुकरर है आज से, और मैं तुझे इख्तियार देता हूं इन भेड़ों का। और आलमगीर कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद पत्रस रसूल का इख्तियार मानती है कि वो कलीसिया का पहला इंसानी सरबराह बना। और कभी फैसले आ पड़ते थे तो पत्रस की सरबराही में मीटिंग बैठती थी और बात होती थी, और जब वो कलाम करता था लोग जानते थे कि खुदावंद इसमें होके काम करता है, खुदा का रूह इसमें है। जब वो गुजरता था बीमारों को लाके डाल देते थे कि उसका साया पड़ेगा तो बीमार शिफा पा जाएगा। जाती तौर पर भी यीशु आपको इख्तियार देने के लिए कलाम करता है। आप गिर गए, आप बैकस्लाइड कर गए, आपने कहीं इनकार कर दिया, आप गुनाह में पड़ गए, यीशु से पीछे हट गए, ईमान से गुमराह हो गए, यीशु को छोड़ दिया, ईमान छोड़ दिया, कलाम छोड़ दिया, पछता रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, तो यीशु कलाम करने के लिए है ना, उसके पास चले जाओ। वो आग जिसके पास आपने इनकार किया था उसी आग के पास जाओ और खुदावंद से कहो, खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है, तेरे कदमों में आ गया हूं, रूहुल कुछ की आग जला दे और मेरे अंदर ईमान की हरारत पैदा कर दे, जो ईमान मर गया है उसे जिंदा कर दे, मेरी मेहनतें जो बेकार हो चुकी हैं उन्हें कामयाब कर दे, मेरा घराना, मेरे रिश्ते, मेरी सेहत, मेरा खानदान, मेरा रोजगार जो दब गया है, जो दफन हो गया है उसे बहाल कर दे, उसे कामयाब कर दे, जो मर गया था उसे जिंदा कर दे, जो दफन हो गया था उसे बाहर निकाल दे, जो गिर गया था उसे उठा दे, मैं जो पीछे हट गया था मुझे आगे कर दे, मैं जो आखिर हो गया था मुझे अव्वल कर दे, क्योंकि वो आखिरों को अव्वल करना जानता है। सो आज यीशु के जी उठने की ईद मनाते हुए जी उठे यीशु के कलाम के मकसद पर गौर करें। वो हमें हर खौफ से आजाद करने के लिए कलाम करता है, वो हमें सलामती देने के लिए कलाम करता है, वो हमारा ईमान बहाल करने के लिए कलाम करता है, वो हमें नविश्तों की समझ देने के लिए कलाम करता है, वो हमारी मेहनतों को कामयाब करने के लिए कलाम करता है, वो हमें मुस्तकबिल की बातें बताने के लिए कलाम करता है, और वो हमें रूहानी इख्तियार और जिम्मेदारियां बख्शने के लिए कलाम करता है। जी उठे यीशु को कबूल कीजिए, उसके कलाम को कबूल कीजिए, क्योंकि वो मेरे और आपके फायदे में है।